नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं भाऊ तोरसेकर जी, और हम उनसे बात करेंगे चुनावों के बारे में, विशेषकर महाराष्ट्र, दक्षिण भारत और पूरे भारत के बारे में भी बात करेंगे। आप जानते हैं उनका विश्लेषण जो है वो कितना सटीक होता है। आपका स्वागत है भाऊ।
नमस्कार नमस्कार।
ये महाराष्ट्र में अभी तक दोनों साइड का जो है वो पूरा का पूरा हिसाब किताब हुआ नहीं अभी तक। इन्होंने तो अनाउंस कर दिया एमवीए ने, लेकिन अभी एनडीए की पूरी सीटें जो है वो अनाउंस हुई नहीं है। 6 सीटों पे अभी पेंच फंसा हुआ है।
हाँ, दोनों तरफ से फंसा हुआ है क्योंकि दोनों तरफ दो पार्टियां ऐसी है, तीन में से, कि उनका आधार क्या है उनको ही पता नहीं है ना। उद्धव की या पवार की हो या एकनाथ शिंदे या अजीत दादा की हो, उनको अपना बेस पक्का मालूम नहीं है। जैसे कि कांग्रेस को मालूम है, बीजेपी को मालूम है, लेकिन बाकी लोगों को उसका अंदाजा नहीं है। तो उनका पेच वहां फंसा है। और दूसरी बात ये होती है कि अब देखिए, शिवसेना के पास 13 MP चले गए थे एकनाथ के साथ, तो उनका अपना वहां का जो वेटेज है वो कितना है, उस पर ही सीट आ सकती है ना आ सकती है ना। अब पिछले बार अब देखो, ये सब बोल रहे हैं, लेकिन अगर मोदी का करिश्मा नहीं होता तो शिवसेना की सीटें 18 नहीं होती, 14 हो जाती, 14 सीटें होती ना। क्योंकि देखो, औरंगाबाद जिसको आप छत्रपति संभाजी का नगर नाम दिया है, पालघर है,
जी
शिरूर है और अमरावती है, ये 4 सीटें तो तीन तीन पांच पांच बार चुनकर आई हुई सीटें गवाई है ना इन लोगों ने, गवाई है। और उद्धव का फोटो लगा था, उनके मान्यवर पिताजी का भी फोटो लगा था, वो मोदी का भी लगा था, और मोदी लहर थी, फिर भी 4 सीटें उद्धव ने गवाई थी उद्धव के लीडरशिप में। तो इसलिए ना अंदाज उद्धव को है ना अंदाज एकनाथ को है। वही बात अजीत दादा की है और शरद पवार की भी है। वो तो अपने बेटी को बचाने में लगे, इसके लिए बहू को भी कोस रहे।
अभी तक जो सीटें हैं अनाउंस की हैं एनडीए की तरफ से महाराष्ट्र में, तो 27 सीटें तो अनाउंस कर चुके हैं बीजेपी वाले, और 10 सीटें अनाउंस किया है शिवसेना शिंदे वाले, और 4 सीटें अनाउंस किया है एनसीपी वाले, और 1 सीट दिया है आरएसपीएस को, और 6 सीटें जो है वो अभी बाकी हैं। तो ये
वो
लेखा
थोड़ा
जोखा
इधर
है।
उधर हो रहा
हाँ,
है,
तो
यानी
ये जो
अदला
6 सीटें हैं जो
बदली
बाकी
करनी
है,
है,
तो मैं
इनकी
आपसे
सीट
ओपिनियन
उधर।
ले
अभी
लेता हूँ।
सिंधुदुर्ग में नारायण राणे को खड़ा करना चाहती है बीजेपी, थाना की
है
सीट फंसी हुई है, फिर नासिक की सीट फंसी हुई है, मेरा ख्याल है पालघर की सीट फंसी हुई है। तो वो हो जाएगा 2-3 दिन में, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, एक आध
ठाणे की फंसी
दूसरा
हुई
कोई
है,
बगावत भी कर सकता है।
ठाणे की फंसी हुई है।
हाँ था,
और वैसे तो ठाणे तो एकनाथ शिंदे का बेटा ही लड़ता था ना यहाँ से।
हाँ वो तो है, लेकिन इस वक्त उनके पास भी कोई कैंडिडेट तगड़ा दिखाई नहीं देता, जितना कि बीजेपी का हो सकता है, जिसका नाम है संजू नाइक, जो पहले 2009 में MP बना था और उसके फादर पहले से शिवसेना में थे, उन्होंने नई मुंबई में बहुत अपनी पैर जमाए थे, फिर एनसीपी में चले गए थे, अब बीजेपी में चले आए हैं। और
जी,
दूसरी
मुंबई
बात है
की भी
कि
2 सीटें।
इसमें, हाँ मुंबई की 2 सीटें हैं, मुंबई की वो क्या बोलते हैं उसको,
नॉर्थ वेस्ट और
वेस्टर्न
साउथ,
मुंबई की है, नॉर्थ वेस्ट
नॉर्थ वेस्ट
मुंबई और साउथ बॉम्बे, तो शायद साउथ
साउथ,
बॉम्बे बीजेपी को दे देंगे। वो नासिक की फंसी है, नासिक की फंसी है।
तो साउथ बॉम्बे में तो ये आया था अपना मिलिंद देवड़ा, इसीलिए कि उसको वो सीट मिलेगी, इसीलिए उसने शिंदे पार्टी ज्वाइन की थी।
नहीं, उसको तो राज्यसभा में भेज दिया गया ना, इसका मतलब ही है कि आज कल लेट करेंगे लेकिन वहां बीजेपी को सीट दी जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी बात, सिंधुदुर्ग की सीट जो है वो भी शिवसेना की है लेकिन बीजेपी को चली जाएगी, क्योंकि नारायण राणे ने कैंपेन शुरू भी कर दिया, और अकेले नारायण राणे ने नहीं शुरू किया है, वहां आशीष शेलार भी पहुंच गए थे आज, जो गोवा का एकदम नोक है वहां सावंतवाड़ी में, सीटें बीजेपी को चली जाएगी ऐसा मुझे लगता है।
जी
और लोग
जी
मामला रहेगा, देखो सब सर्वे आ रहे हैं, यशवंत देशमुख से लेके जो जो सेफोलॉजिस्ट है वो लगातार बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में गड़बड़ होगी तो कमल कमल छाप की नहीं होगी, दूसरे चुनाव चिन्ह पर लड़ने वाले हार सकते, लेकिन कमल चुनाव चिन्ह है उस पर लड़ने वाले हारेंगे नहीं, ये तो ओपनली बोल रहे हैं। और वही तो मामला है, वही तो मामला है।
अरे ये औरंगाबाद सीट का नाम अभी भी औरंगाबाद है, यद्यपि
हाँ वो तो लीगली अभी
शहर का नाम तो
बदलना
बदल
पड़ेगा
गया।
ना, लीगली
अब वो तो
बदला
जब
नहीं है।
डिलिमिटेशन होगा तभी चेंज होगी। तो जो
हाँ
औरंगाबाद सीट है, तो वो पिछली बार ये आपस के झगड़े में आ रहे थे, वो चंद्रकांत खैरे आ रहे थे और एक दूसरे खड़े हो गए थे, तो उस कारण वो सीट हारी गई थी। तो इस बार क्या है, चंद्रकांत खैरे तो खड़े हुए हैं आपके शिवसेना यूबीटी की तरफ से।
हाँ वो यूबीटी के तरफ से खड़े हैं, लेकिन वहां के देखो वो मेरा ख्याल है 6 में से 4 एमएलए जो है, 6 एमएलए होते हैं, 4 एमएलए तो शिंदे गुट में, वो संजय सिरसाठ है, दूसरा कोई मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक बीजेपी का है, 2 बीजेपी के है और बाकी 4 इनके है। वो यूबीटी को कोई चांस नहीं है वहां। और दूसरी बात है, पिछली बार एमआईएम ने वो सीट जीती थी तो प्रकाश अंबेडकर की हेल्प से जीती थी, लेकिन प्रकाश अंबेडकर ने इस टाइम वहां से मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा कर दिया, तो
अच्छा
उनकी आइडिया क्लियर है कि एमआईएम को उनको सबक
अच्छा
सिखाना है। पिछली बार
एमआईएम से
मुस्लिम
क्या है।
कैंडिडेट एमआईएम का दलित वोटों की मदद से चुनकर आया था, इस बार दलित वोट तो नहीं मिलेंगे प्रकाश अंबेडकर के, लेकिन वो दूसरे एक मुस्लिम कैंडिडेट को मिलेंगे, और वो भी एमआईएम का कारपोरेटर था, वहां का पार्षद था, उसको उठा के उन्होंने कैंडिडेट बना लिया प्रकाश अंबेडकर ने। तो उनकी आइडिया क्लियर है कि इस बार इम्तियाज जलील ज्यादा आगे आगे कर रहा था तो उसको जमीन पर लाना है, ये प्रकाश अंबेडकर का टारगेट है।
ये प्रकाश अंबेडकर ने क्यों नहीं इनके साथ समझौता किया, प्रकाश अंबेडकर इतनी ज्यादा सीट क्यों मांग रहे थे, जानते हैं कि अकेले नहीं जीत सकते फिर भी।
नहीं, प्रकाश अंबेडकर का एक बात क्लियर है, उनको इनके साथ जाना ही नहीं था। हाँ लेकिन
अच्छा
क्या होता है, आप जरूरतमंद होते हो तो आपके साथ कोई भी खेल करेगा ना, गधे को भी भगवान मानना पड़ता है, पहले जो गलतियां की है उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। सबसे पहले प्रकाश अंबेडकर के साथ 1.5-2 साल पहले हाथ मिलाया था उद्धव ठाकरे ने, अब प्रकाश अंबेडकर बोलता है सबसे बड़ा दगाबाज उद्धव ठाकरे, उसके बाद बोलता है शरद पवार दगाबाज है। उन्होंने आउटसाइड सपोर्ट जो दिया है वो कांग्रेस को 2-4 कैंडिडेट को दिया है प्रकाश अंबेडकर। अब उसके पास पिछले लोकसभा चुनाव के 6% वोट थे, विधानसभा आने तक 6 महीने में वो 3-4% बच गए, तो ये सब मैथमेटिक्स बिगड़ा है। एक बात साफ है कि कांग्रेस का जो कुछ है वो है, बीजेपी का है वो है, शिवसेना और एनसीपी के पास कैंडिडेट तक नहीं है। देखो उधर शरद पवार ने 10 सीटें लिए, 10 कैंडिडेट लाए, लेकिन 10 में से कम से कम 5 या 6 तो उधारी के लाए है ना, इधर से उठाओ उधर से उठाओ उनके है। एक अभी नगर में खड़ा किया है नीलेश लंके, वो तो कल परसों पवार अजीत दादा का गुट छोड़कर गया, हारेगा और वापस आ जाएगा, अजीत दादा ने उस पर एक्शन तक नहीं लिए। हाँ
खुद ही भेजा है
नहीं
क्या
नहीं पवार दिखा रहे हैं कि मैं लड़ रहा हूं, लेकिन वो सिर्फ बारामती में लड़ रहे हैं, और बारामती में भी
अच्छा
ऐसे लड़ रहे हैं कि उन दुनिया को पता चलता है कि ये अपनी पुश्तैनी जो जायदाद है बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और माफ भी करना चाहिए, बेटी का बाप है, लड़की की साइड है तो थोड़ा झुकना पड़ता है ना।
वैसे बारामती में क्या लग रहा है।
मुझे लग रहा है सुप्रिया सुले हार जाएगी, सुनेत्रा पवार जीत जाएगी, और
ये
ये मुझे
जो
लगता नहीं, खुद पवार को और सुप्रिया सुले को भी वही उनका आकलन है इसलिए इतनी दौड़ धूप कर रहे हैं, बहुत बहुत दौड़ धूप कर रहे हैं। पूरी फैमिली अजीत दादा के खिलाफ लाकर खड़ी कर दिए, लेकिन जो फैमिली आज तक राजनीति में कहीं भी नहीं थी उनका तो इन्फ्लुएंस होने वाला नहीं है ना, क्योंकि पिछले 15-20 साल से वो पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी वो अजीत दादा ही बहन को चुन कर लाते थे। एक आंकड़ा आपको बता देता हूँ, पिछले चुनाव में 1,57,000 से लीड से सुप्रिया जीत गई थी, उसमें से 1,27,000 अकेले बारामती यानी अजीत दादा की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां से लीड था, यानी कि बाकी जो 5 विधानसभा बची है उसमें सिर्फ 30,000 का लीड था। तो आप समझ सकते हो उसमें से कितना घटने वाला है। दूसरी बात, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोकसभा की 2 बीजेपी वाले हैं, 2 NCP वाले हैं, दोनों अजीत दादा के साथ है, यानी अजीत दादा और दत्ता भरणे। अब बीजेपी का हरा हुआ वहां का जो हर्षवर्धन है वो भी अजीत दादा के साथ है, यानी सुनेत्रा पवार के साथ है। तो क्या बात, एक बात आप समझ लो, महाराष्ट्र की बारामती की राजनीति में आज तक जिनका काम शरद पवार ने बिगाड़ा था उनको ये पहली बार ये अवसर मिल रहा है कि इनको सबक सिखाया जाए, इनको सबक। आपको याद होगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बोलते थे, बड़े राक्षस को हराने के लिए छोटे राक्षस की मदद लेनी पड़ती है। तो वो सारे लोग अजीत दादा के साथ गोलबंद हो रहे, क्योंकि उनको मालूम है इसको हम हैंडल कर सकते हैं, ये अभी पूरा चाचा नहीं बन गया, अभी भी भतीजा है, तो भतीजा को हैंडल करेंगे, पहले निपटा दो चाचा को। 40 साल से भोर के जो एमएलए थे, जो चीफ मिनिस्टर बन सकते थे, इंदिरा गांधी के बहुत फेवरेट थे, उनका काम उस समय 40 साल पहले शरद पवार ने बिगाड़ा था, उनको उनकी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में हरा दिया था। अब उसके बाद पिछला जो उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट बना उसमें उन्हीं का अनंतराव थोपटे का बेटा जो संग्राम सीए थोपटे है वो मिनिस्टर बन सकता था, उसको मिनिस्टर बनने नहीं दिया पवार ने। उसके बाद नाना पटोले स्पीकर का रिजिग्नेशन करके गए तो संग्राम थोपटे का नाम चल रहा था, तो शरद पवार ने स्पीकर का चुनाव ही होने नहीं दिया। इतनी इतनी पुरानी दुश्मनी है, तो उनके पाव छूने गए थे 2 हफ्ते पहले पवार। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना, अरे भैया लड़की की साइड है, लड़की की साइड है ना, बहू की साइड, लड़की के पिता को अपना क्या बोलते हैं उतार कर नीचे रखना पड़ता है पगड़ी। आपके नॉर्थ में वो बोला जाता है ना, लड़की का बाप पगड़ी उतार के पाव पर रख देता है। तो पिछले कम से कम 2 हफ्तों में 6-7 पुराने दुश्मन हैं, उनके पैर पर जाकर शरद पवार ने अपनी पगड़ी रखी है। संभाजी काकड़े नाम के जो बारामती से 77 में चुनकर आए हुए एमपी थे, उनसे भी इनका पुराना झगड़ा है। अब कल परसों उनकी बीवी मर गई है तो सांत्वना देने के लिए यह पहुंच गए। 30 साल बाद चंद्रकांत तावरे नाम के शुगर मिल के बड़े कॉपरेटिव सहकार महर्षि है, उनके दरवाजे पर जाकर पहुंच गए। फिर दौंड में कोई कटोरिया या बगा बजोरिया है वहां जाकर पहुंच गए। तो बेटी का बाप है यार, पगड़ी रखेगा ना, किसी के भी पाव पर रखेगा, बेटी को संभाल लो भैया।
लेकिन ये तो आपको थोड़ा आश्चर्य नहीं
बारामती में क्या राजनीति हो रही है?
पहले बहुत सारे लोग ये कहा करते थे कि ये जो है ये मिली भक्ति का खेल खेल रहे हैं, चाचा भतीजा। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि भतीजा जो है वो चाचा को पूरी तरह से खत्म करने पर आमादा है।
अरे खेल किससे रहे आप, वो भी समझ लो ना, खेल किससे रहे, मोदी और शाह से। 2001 में मोदी जी मुख्यमंत्री बने, उस समय गुजरात में कौन कौन बड़े नेता हुआ करते थे, याद है आपको? आज कोई इनका नाम तक नहीं ले रहा, काशीराम राणा, शंकर सिंह वाघेला, केशु भाई पटेल, सुरेश मेहता, आज किसी भी अखबार में साल भर में कभी इनका नाम तक नहीं आ रहा है। यानी पूरा का पूरा मैदान साफ कर दिया अपने भी पार्टी का और सामने वाली पार्टी का। ऐसे खिलाड़ियों से पवार पंगा ले रहे हैं। चाचा को कितना जानकार है पता नहीं, लेकिन भतीजा समझ गया कि भैया रहना अच्छा। है राजनीति में वो दिल्ली वालों से यानी गुजरात वालों से संभाल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये केशुभाई को हराते हैं 2012 के चुनाव में और सबसे पहले उनके ही पाव छूते हैं, उनको ही पेड़ा खिलाते हैं। तो ये बम्बई या हिंदी में बोला जाता है ना, येड़ा बिन के पेड़ा खाता है, तो ये पेड़ा खिलाता है, ये समझ लो।
तो चाचा मिलकर मुंबई की बात कर लेते हैं, थोड़ा मुंबई की बात कर लेते हैं। ये मुंबई में ये जो ये बाहर निकला है ये संजय निरुपम, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है कांग्रेसियों को?
इसमें अभी बहुत सारा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सीट तो जो बीजेपी के साथ खड़ा रहेगा वो चुन कर रहेगा। लेकिन संजय निरुपम एक आखिरी आशा थी राहुल उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी बचाने की। मैं क्या बोल रहा हूँ, बीएमसी बचाने के लिए संजय निरुपम एक आधार था, वो भी चला गया। क्योंकि देखिए जो ट्रेडिशन है बीएमसी के, बीएमसी चुनाव की, मुंबई कॉरपोरेशन की, उसमें शिवसेना और कांग्रेस इनमें ही लड़ाई चलती थी। एक नंबर पर कांग्रेस हो या दो नंबर पर शिव, पिछले 30 साल से तो शिवसेना एक नंबर थी, दो नंबर कांग्रेस थी। 2017 में आखिरी चुनाव हो गया, उसमें बीजेपी एकदम दो नंबर पर आ गई, और दो नंबर भी नहीं, लेवल थी 84-82। तो क्यों आ गई थी? उससे पहले 2017-2014 से पहले मुंबई में जो मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी वगैरह जो थे वो तो बीजेपी के साथ थे, लेकिन नॉर्थ इंडियन बीजेपी कांग्रेस के साथ थे, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी इकट्ठा थी और शिवसेना का साथ टक्कर देने वाली जो पार्टी थी उसके साथ नॉर्थ इंडियन यानी यूपी का भैया जो बोलते हैं मुंबई में, वो उनके साथ थे। तो इसलिए 2017 के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके यूपी वालों के जो नेता हुआ करते थे, हरबंस सिंह, राजवंश सिंह, कृपा शंकर सिंह, ये बीजेपी में आ गए। अब तो कृपा शंकर सिंह जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे वो 3 साल से बीजेपी में थे, इस वक्त उनको जौनपुर से लोकसभा का टिकट भी दे दिया बीजेपी ने। तो बचे थे बिहारी यूपी, बिहारी नॉर्थ इंडियन या बिहारी भैया, उनका नेता था निरुपम। अब निरुपम भी हट गया, आप ये समझिए उद्धव के लिए कांग्रेस का सपोर्ट किस लिए चाहिए था? नॉर्थ इंडियन कांग्रेस के साथ हमारे साथ आ जाएंगे। तो निरुपम अगर झगड़ा करके निकल गया तो बचे कुचे जो नॉर्थ इंडियन बिहारी थे वो भी कांग्रेस के हाथ से निकल गए और अल्टीमेटली उद्धव के हाथ से बीएमसी के लिए निकल गए, ये आप समझ लो। और ये छोटी संख्या नहीं है, छोटी संख्या नहीं है। मेरा अंदाजा है कम से कम 12-13% या 15% तक बिहारी है और 15-20% तक यूपी वाले हैं, यूपी, हिमाचल वगैरह, राजस्थान। तो वो ठीक है, वो कृपा शंकर या हरबंस के साथ थे, लेकिन ये टिपिकल बिहारी था। और जब बिहारी बच्चों को मारा गया था उस कारण से ये शिवसेना से निकलकर, ओरिजिनल निरुपम शिवसेना का था, कांग्रेस में चला गया था। तो इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा परिणाम नहीं, लेकिन अगर ये युति के साथ आ जाएगा, बीजेपी में आ जाएगा या शिंदे वगैरह किसी के साथ आ जाएगा, तो उद्धव के लिए बीएमसी हाथ से निकल गई, आज ही निकल गई
बीएमसी का। हाँ, बीएमसी का, वैसे तो बीएमसी का इलेक्शन जो है ये तो टलवाते आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, ये अब मेरे
हाँ
ख्याल
ये
से
लगातार आ
विधानसभा चुनाव के
जाएंगे,
बाद ही
जैसे
होगा।
84 में हुआ था लोकसभा, लोकसभा के 3 महीने बाद विधानसभा, विधानसभा के 2-3 महीने बाद कॉरपोरेशन हुआ था, जब शिवसेना ने पहली बार बीएमसी अपने हाथ में ली थी 84 में, और उसके पहले 2 चुनाव बहुत बुरी तरीके से शिवसेना हारी थी। जो मिल एरिया है वहां ऐसे वैसे करके कहां से एक भुजबल चुनकर आया, बाकी वहां से दत्ता सामंत के 3 एमएलए बने थे। दत्ता सामंत ने लोकसभा जीत ली थी, जो शिवसेना का गढ़ माना जाता है उस सेंट्रल मुंबई से, लेकिन विधानसभा में शिवसेना आगे निकल गई और उसके बाद लगातार शिवसेना सत्ता में बीएमसी में रही।
अच्छा भाव, एक बात ये बताइए कि ये एक इस समय चल रहा है गुजरात में और यूपी में कि ये राजपूतों का बताया जा रहा है कि साहब की राजपूत जो हैं वो कुछ रुष्ट हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो ये आपको महाराष्ट्र में भी कुछ इस तरह का दिखाई पड़ रहा है क्या?
नहीं, एक आप अगर पूरा कैनवास ले ले तो ये पुरानी बात हो गई है। जातिगत काउंटिंग जो हम करते हैं हमारे दिमाग में पॉलिटिकल एनालिसिस में होता है, वो तो मोदी ने पिछले 10 साल में तोड़ दिया है। बहुत 80% जातियों को, यानी जात के जो लोग होते हैं उनको लेवल पर लाके रखा है मोदी ने। राजपूत नाम जात वगैरह बोलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन कितने मराठा हो, राजपूत हो, जाट हो, ये हम हमारे दिमाग में वो बड़े जमींदार वगैरह वो नहीं है। उनके कम्युनिटी में 80% से ज्यादा गरीब ही होते हैं। अगर मोदी के लाभार्थी उनमें से 80% बन जाते हैं तो जात का मामला बचता ही नहीं ना, जात का मामला कहाँ बचता है। लेकिन एनालिसिस करने हम बैठे हैं तो हमारे दिमाग में तो वही है। आप मेरे घर में 20-25 साल पहले आए थे और हमारी बेटी को देखा था, वो स्कूल जा रही थी, और आज अचानक आ गए तो लेडी आपके सामने खड़ी रहती है तो आप हैरान हो गए, वही है ये बच्ची, वो 25 साल पहले की बच्ची। अगर नहीं आएंगे तो आपके दिमाग में वही इमेज है कि भाऊ की बेटी यानी स्कूल जाने वाली बच्ची, अब तो वो बड़ी अफसर बन गई है, लेकिन आपके दिमाग में वो बच्ची रहती। उसी ढंग से ये जो राजपूत नाराज है, मराठा नाराज है, अरे क्या बात कर रहे हो, मराठा नाराज होता तो 40-41 सीटें बीजेपी महाराष्ट्र में जीत नहीं पाती। वही बात जाट नाराज होता तो क्यों 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीत ली पिछली बार। तो ये मोदी ने तोड़ दिया है ये जो भ्रम है, लेकिन बुद्धिजीवी ज्यादा भ्रमिष्ठ होता है, कट्टर भ्रमिष्ठ होता है। आप अज्ञानी लोग होते हैं ना, उनका भ्रम जल्दी टूट जाता है। वो पाँव छुएंगे, उस कोई महाराज होता है उसके पाँव छुएंगे, उस पर चढ़ावा चढ़ाएंगे, लेकिन उसका लफड़ा अगर सामने आ जाए तो उसको घुसकर भी पीटते हैं। वो अज्ञानी होते हैं, ज्ञानी होते हैं वो उसका विश्लेषण करते बैठेंगे, वहां तक वो भाग जाएगा, पर अमेरिका वगैरह निकल जाएगा, ये फर्क होता है। इसलिए राजपूत नाराज है, मराठा नाराज है, जाट नाराज है, पटेल नाराज है, ये बातों पर मैं नहीं विश्वास करता। ये पुराने बात 20 साल पहले की बात थी, लेकिन मोदी के जमाने में तो वो पूरे का पूरा, वो बोलते ना मेरे लिए 4 जाति है, नारी है, युवा है, किसान है, मजदूर है, काम खत्म। क्योंकि हर हर जात का मजदूर है, हर जात की नारी है, हर जात का युवा है, तो उन सबको उन्होंने इकट्ठा करके लाभार्थी नाम की एक जात बना दी है, एक कास्ट बना दी है।
करेक्ट। तो आपको क्या लगता
और
है
एक बात
महाराष्ट्र
बोल दो,
में
आज
है?
का पूरा चुनाव जो है, आज का पूरा चुनाव जो है वो आपको मोदी चाहिए, आपको मोदी नहीं चाहिए, बस इस पर बटा है। हाँ मैं बोल रहा हूं ये बात 85-90% सच है, 10-15% जात वगैरह देखेंगे ना, ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन 85% से ज्यादा मोदी चाहिए मोदी नहीं चाहिए, इसमें बटा है।
ये आप क्या सोचते हैं कि महाराष्ट्र में ये पिछली बार 41 सीट्स जीत के आए थे, 23 जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, 18 जीती थी शिवसेना ने, तो कुल 41 जीती थी, इस बार ये रिपीट हो सकता है क्या या इससे ज्यादा भी जा सकता है?
नहीं, रिपीट हो सकता है, ये निर्भर है कि बीजेपी कितनी सीटें लड़ रही है। देखो, मैं मानता हूं कि कमल चिन्ह पर जितने खड़े रहेंगे, एकाध इधर उधर हो गया तो, वरना बीजेपी के जितने, समझो 30 सीटें बीजेपी लड़ रही है, तो 30 सीटें आने वाली, 30 सीटें आने वाली। अब बाकी के जो 10 सीटें कम होगी, वो शिवसेना टूटी इसलिए हो सकती है, एनसीपी टूटी इसलिए हो सकती है, एनसीपी और उनको उन्होंने 18 से 16 या 18 सीटें देती है, तो उसके जो रिजल्ट हो गए वो शायद गड़बड़ कर सकते हैं, वो गड़बड़ कर सकते, वरना कमल
था। लेकिन बारामती
जो है,
बारामती जीत रही है पवार।
हाँ, बारामती तो जीतेंगे, वो उसका गढ़ है, उसको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया है सुप्रिया सुले को हराने के लिए, और ये मैं आज नहीं बोल रहा हूं, मेरे मराठी के वीडियो आप चेक करेंगे तो 2 साल से मैं बोल रहा हूं, 2 साल से, कि घर से कोई निकलेगा। और जब शिवसेना को चुनाव आयोग ने, एकनाथ शिंदे को चुनाव आयोग ने पूरी की पूरी शिवसेना दे दी, चुनाव चिन्ह के साथ, नाम के साथ दे दी, उस वक्त मैंने एक हफ्ते में एक वीडियो बनाया था कि अरे उद्धव ठाकरे की पार्टी जो उनकी विरासत थी वो हटाई गई, तो सुप्रिया क्यों नाच रही है, फड़फड़ा रही है, क्यों, इसको डर है अपना चचेरा भाई अपने बाप की पार्टी लेकर भागने वाला है, ये मैंने बनाया था। और 3 महीने वही सच्चाई निकली, मैंने शायद 20 मई 2023 को ये वीडियो बनाया था और 2 जुलाई को होना था, वो हो गया, क्योंकि कुछ मेरे पास भी कोई सूत्र है वो बोलते हैं, लेकिन मैं क्रॉस चेक करने से पहले उस पर कुछ बोलता नहीं, लिखता नहीं, तो मुझे खबर थी। और इसको एक ही टारगेट दिया गया, देखो मैं तो मानता हूं कि अजीत दादा महाराष्ट्र में आज सबसे सयाना पॉलिटिशियन है, क्योंकि वो जानता है कि उसको लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना है, उसको इस लोकसभा चुनाव में उसको चाचा के साथ लड़ना है, और क्या प्रूव करना है, 1, 2, 4, 10 सीटें नहीं, उसको रिकॉग्निशन के लिए जितने मिनिमम वोट चाहिए उतने लाने ही लाने हैं, नहीं तो पार्टी हाथ से निकल जाएगी। वही बात एकनाथ शिंदे के लिए भी है, वही बात शरद पवार के लिए और उद्धव ठाकरे के लिए भी है, लेकिन कोई एनालिस्ट ये बात दिमाग में ले ही नहीं रहा है। देखो, उद्धव का चुनाव चिन्ह हो या शरद पवार का हो, वो टेम्पररी है, और उतना जितना उनका टेम्पररी है उतना ही एकनाथ शिंदे और अजित पवार की मान्यता और चुनाव चिन्ह टेम्पररी है, जो कुछ 6% वगैरह लगता है वो लाना जरूरी है, ना कि सीटें लाना जरूरी है, समझे आप? अब आप जितना भी महाराष्ट्र के बारे में स्विंगिंग स्टेट वगैरह सुन रहे हो, उनके दिमाग में यह बात नहीं आ रही है कि उनको पार्टी बचानी है, सीटें नहीं बचानी है। तो ये इस ढंग से अकेला अजीत दादा सोच रहा है, इसलिए वो ज्यादा सीटें नहीं मांग रहा है, दे रहा है उतने पास है, 1-2 सीटें आ जाए, 3 सीटें आ जाए तो भी चाचा तो 4 लाते थे, इतने बड़े नेता होकर मैंने तो 3 सीटें लाई और पार्टी का परसेंटेज भी दिखाया है, इसलिए शरद पवार भी खड़े करने के लिए उम्मीदवार नहीं है, प्रत्याशी नहीं है, उधार के ला रहे, लेकिन 10 सीटें क्यों लड़ा रहे, कि उनको भी 6% दिखाना है, समझ गए आप चुनाव क्या है, हम सीटों पर काउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन 6 में से 4 पार्टियां अपना सिंबल और नाम बचाने के लिए 6% के लिए लड़ रही, ये पहले दिमाग में ले लो, तो महाराष्ट्र का सीनेरियो आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा।
अच्छा, महाराष्ट्र से आगे चलते हैं थोड़ा और अब दक्षिण भारत में बात करते हैं, विशेषकर तमिलनाडु की। क्या आपको लगता है कि तमिलनाडु जो है वो जिस प्रकार से 2019 में पश्चिम बंगाल ने आश्चर्यचकित किया था, तो तमिलनाडु उस प्रकार से कर सकता है क्या?
कर सकता है ऐसा मुझे लगता है। इसका कारण एक है, आप अगर मैं लगातार बोल रहा हूं कि मोदी का रोड शो हो, या पर्टिकुलरली आजकल जो मोदी के रोड शो के वीडियो आए आप देख लो, और उसमें मोदी मत देखो, रास्ते पर खड़े हुए लोग हैं, जो महिलाएं हैं, मजदूर है, या कोई ब्राह्मण है, वो खाली धोती पहना है, जनेऊ पहना है, गंध लगाया है, उनकी महिलाएं हैं, वो जिस ढंग से एक्साइट हुई है, उनकी बॉडी लैंग्वेज समझो, ये दबे कुचले लोग हैं। सनातन का नाम लेना भी पाप माना जाता है, ऐसे इलाके के ये लोग हैं जिनको लग रहा है कि हमारा कोई सेवियर आ गया है। वो जिस एक्साइटमेंट से हाथ करते हैं, ऐसा दिखाते हैं, वैसा दिखाते हैं, मोबाइल स्मार्टफोन लेकर रिकॉर्डिंग करते हैं, कुछ लोगों के आंख से आंसू निकल आते हैं। क्यों, ऐसी क्या बात है, मोदी में क्या है? नहीं, ये हमारा सेवियर आया है, हमारा कोई उद्धारक आया है। ये जो बात है, ये वोट कन्वर्ट करने वाली बात होती, और दबे हुए हैं। और देखो, और एक बात है, 60-65% के आसपास भी वोटिंग होती नहीं। इसका मतलब ये है, 25-30 सनातन को मानने वाला जो क्लास है वो उदासीन रहता था, वो निकल पर बाहर आएगा, और बीजेपी उसको टारगेट कर रही है। और मैं मानता हूं कि अन्नमलाई ने बिल्कुल वो लाइन पकड़ी है, मैंने एक वीडियो में बोल दिया था, 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने जो मौलाना की टोपी वापस दी थी, याद है
जी
आपको,
जी
जो टोपी वापस दी थी, उस एक दिन में मोदी का 10-12% का हिंदू वोट बैंक बन गया था। पिछले 3 महीने से अन्नमलाई ने एक एक विधानसभा चुनाव वो पदयात्रा करते घूमे थे, और वहां की ट्रेडिशनल मंदिर देवताएं उनके स्वांग लेकर लोग खड़े थे, और ड्रम बड़ा बजा रहे थे, स्वांग नाच रहे थे, आपने देखा। तो उसमें जो लोग लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ी है, तो वो दबे हुए सनातनी को बाहर ला रही है, और उसका बड़ा चमत्कार होगा। आपको याद होगा, हम लोग बोलते हैं लेकिन भूल भी जाते। 2019 के चुनाव में आपने उल्लेख किया कि बंगाल जैसा कुछ होगा, बंगाल में बीजेपी की स्लोगन क्या थी, चुपचाप कमल छाप, याद है आपको,
हाँ
18 सीटें आई, वो चमत्कार नहीं था, उसका कोड वर्ड था चुपचाप कमल छाप। तो तमिलनाडु में वो होने जा रहा है। हमारा एक दोस्त है तमिली, मुंबई में 50-40 साल से रहता है, उसने मुझे ये बात समझाई कि बोला वो रास्ते पर लोग खड़े, उनको देख, उनकी एक्साइटमेंट, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख, पहली मंजिल पर खड़े हैं लोग, कोई शोरूम जैसी कांच लगी है, अंदर से कोई ऑफिस वाले हाथ कर रहे हैं मोदी को। ये बात बड़ी अजीब है, ये पहली बार। और एक बात, और एक फैक्टर हमको ध्यान में लेना पड़ेगा कि ये पहला चुनाव है, ये पहला चुनाव है जब जयललिता और करुणानिधि पिक्चर में नहीं है, दोनों करिश्मेटिक लीडर इस लोकसभा चुनाव में नहीं है, समझ गया। तो फर्क
करेक्ट
कैसे हो सकता है वो आप समझ लो, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति जो है वो करिश्मेटिक लीडर पर चलती है, इसलिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर, केडर बेस्ड पार्टी डीएमके, उसको करिश्मेटिक एमजीआर ने हराया था। करिश्मेटिक पॉपुलर फिगर जयललिता ने हराया था, जो दोनों खुद द्रविड़ तमिली नहीं थे। अब इसमें आप और एक बात जोड़ दो, 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई वो लगातार कहीं ना कहीं दिखाई देती है हमको, तो वहां सचिन तेंदुलकर के बाजू में कौन बैठा था? उसका नाम है रजनीकांत। उसका नाम है रजनीकांत। और 96 में गुस्से में एक सेंटेंस रजनीकांत बोल गया था और जयललिता चुनाव हार गई थी, और करुणानिधि मुख्यमंत्री बन गए थे कि ये कैसी सरकार है। उसकी गाड़ी कहाँ ट्रैफिक में फंसी थी जयललिता के रैली के कारण, तो बहुत गुस्से में बोल गया था ये कैसी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट चाहिए नहीं। बस उसने पॉलिटिक स्टेटमेंट नहीं किया था, लेकिन उसको भुनाया जो क्या बोलते हैं उसको, वो उस वक्त एक टीएमसी वहां बनी थी, तमिल मनीला कांग्रेस।
हाँ अभी भी है, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। हाँ जी के वासन वाली।
हाँ नहीं नहीं वो अभी हाँ है, अभी है, लेकिन वो पार्टी ओरिजिनली वो थी। तो वो डीएमके के साथ मिले और जयललिता हार गई थी। तो लास्ट मोमेंट में अगर एक सेंटेंस भी, वो अयोध्या में बैठा हुआ रजनीकांत बोल जाएगा तो बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है।
चलिए, ये तो तमिलनाडु की बात हुई और अन्नामलाई में करिश्मा है, ये दिखता है। तो अन्नामलाई के नाम पे भी वोट
मतलब
पड़े।
एक आप समझो, उसने डायरेक्टली अटैक किया, वो बोला हमारा सरकार आने दो, ये साला पेरियार वगैरह के सब पुतले तोड़ देंगे, अन्नादुराई पेरियार के पुतले ही तोड़ देंगे। ये डायरेक्ट अटैक कोई हिम्मत नहीं कर सकता था, इसने पहली बार किया है। वो भिड़ गया, द्रविड़ियन आइडियोलॉजी से भिड़ गया। तो ये दबे दबे लोग होते हैं, वो उदासीन होते, हाइबरनेशन में होते, उनको जगाया है उसने। और बात ये कि वो दो नंबर की पार्टी बनना चाहते हैं, उसको मालूम है इस चुनाव में 39 में से 18-20 तो नहीं आएंगे, लेकिन वोट परसेंटेज में अगर 25% क्रॉस कर जाता हूं तो अगले एक साल में 35 तक जाना आसान हो जाएगा। और 35% तमिलनाडु की राजनीति में बहुत होते हैं।
और तेलंगाना और आंध्रा में क्या देखते हैं आप?
तेलंगाना में अभी भी कांग्रेस जीतेगी, अच्छी सीटें जीतेगी, वो बीआरएस को रिप्लेस करेगी, और वो भी जरूरी है क्योंकि बीजेपी कांग्रेस को रिप्लेस करती है, ये आप समझ लो। बीजेपी कोई लोकल पार्टी को रिप्लेस नहीं करती, बीजेपी कांग्रेस को रिप्लेस करती है। तो बात ये है कि बीआरएस का मानो खत्म हो जाएगी, अभी बचेंगे एक दो सीट आएगी, लेकिन कांग्रेस रिप्लेस करेगी और फिर से नेशनल पार्टी एस्टेब्लिश हो जाएगी। और नेशनल पार्टी एस्टेब्लिश होती है तो उसको तो बीजेपी हराएगी, क्योंकि बीजेपी भी नेशनल पार्टी है। तो सीधे सीधे टक्कर जो है वो नेशनलिस्ट पार्टी में हो जाएगी, बीआरएस पिक्चर से हट जाएगी। वही बात तमिलनाडु की थी, तमिलनाडु में ओरिजिनली कांग्रेस और डीएमके थी, फिर अन्ना डीएमके बनी तो पूरी राजनीति दो द्रविड़ पार्टियों में बट गई, यही वहां था। तो अभी कांग्रेस रिप्लेस करेगी क्योंकि कांग्रेस के पास कोई स्ट्रांग लीडर है नहीं, ऐसा अन्नामलाई जैसा वहां कोई लाकर खड़ा कर देंगे तो वहां की बाजी पलटेगी। और वो जो माधवी लता है वो उसका एक नमूना मैं मानता हूं, जिस ढंग से वो ओएसी से भिड़ी है, चुनकर आए ना आए, हिम्मत बढ़ाना जरूरी होता है। जब देखो दंगा होता है ना तो पहला पत्थर किसी ने मारना जरूरी होता है, बाकी सब इंतजार में होते हैं, उनको मारना होता है, लेकिन पहला कोई घुसे यार। तो इसलिए तेलंगाना में जो क्या क्या बोलते, तेलंगाना में तो कांग्रेस जीतेगी लेकिन बीजेपी भी 4-5 सीटें लाएगी और नेक्स्ट विधानसभा में तेलंगाना में बदल जाएगा।
जी, और आंध्रा?
आंध्रा में नहीं होगा, आंध्रा में ठीक है अभी उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी बीजेपी, इसलिए उनको उन्होंने टीडीपी को साथ लिया है ना, टीडीपी को साथ लिया है कि अगर टीडीपी सत्ता में आ जाए तो नवीन पटनायक जैसा आराम से अपनी जगह रहेगा तो उसको रहने देंगे, वरना वो भी खत्म हो जाएगा, वरना वो भी देखो अन्नादुराई क्या बोलते, नवीन पटनायक जो है वो फालतू का पंगा नहीं लेता है ना, बीजेपी को देश में राज करना है और जितना कुछ स्टेट में होगा वो हो सकता है आराम से करो। अगर कमलनाथ हो, आपका गहलोत हो, उनको अगर कांग्रेस ने बढ़ावा दिया होता तो बीजेपी के लिए स्टेट में मुश्किल हो सकती है। अब ममता के लिए बीजेपी कहाँ क्या है, जरूरी नहीं था लेकिन आ गए, ममता से पहले लेफ्ट फ्रंट आ गई, आप उधर लड़ोगे किससे और दिल्ली में आके कांग्रेस को सपोर्ट करोगे, तो यही तो केरल में होने वाला है, देर लगेगी लेकिन हो जाएगा। वैसे ही आंध्रा और तेलंगाना जो है वो ट्रेडिशनली कांग्रेस का अड्डा रहा है और अभी की जो बीजेपी है मैं मानता हूं यही तो ओरिजिनल कांग्रेस है, यही तो ओरिजिनल कांग्रेस है ना। अब तो मोदी जी ने और इन्होंने बीजेपी वाले ने बोल दिया कांग्रेस का एजेंडा क्या है, कांग्रेस का न्याय पत्र क्या है, मुस्लिम लीग का है, और मुस्लिम लीग क्या बोलती थी, कांग्रेस हिंदू पार्टी है। 1947 से पहले मुस्लिम लीग क्या बोलती थी, कांग्रेस हिंदू पार्टी है। आज की कांग्रेस ही बीजेपी को हिंदू पार्टी बोल रही है और बीजेपी बोलती है ये तो मुस्लिम लीग हो गई, समझ रहे हैं आप।
तो आप ये बताइए, अब लास्ट में पूछता हूँ कि ये जो मोदी जी ने डिक्लेयर कर रखा है कि 370 सीटें आएंगी बीजेपी की और 400 एनडीए क्रॉस करेगी, ये संभव लग रहा है क्या?
हाँ मैं तो पहले से बोल रहा हूँ, मैंने तो अगस्त में 325 से 350 यह आंकड़ा दिया, लेकिन गठबंधन या अपोजिशन क्या करता है उस पर 400 होने होना, यानी राहुल गांधी क्या करते हैं उस पर निर्भर होगा, 400 370 400 और जो एक्सपेक्टेड है वो तो राहुल गांधी कर रहे। अब एक आपको आंकड़ा बताता हूँ, 303 तो बीजेपी के थे ही चुनकर आए हुए थे, दो नंबर की सीटें 72 थी, तो एक या दो नंबर की 2019 की सीटें कितनी होती है, 375, उसमें से 224 सीटें ऐसी है कि 50% से ज्यादा वोट पाए थे बीजेपी ने, तो जो बच्चे हैं 375 में से तो उसमें 3 नंबर पर लेकिन थोड़ा बहुत फर्क, ऐसे 160 सीटों पर बीजेपी पिछले 2-2.5 साल से काम कर रही है और वो काम क्या कर रही है, ये इतनी सीटें पहली 224 और 160 यानी 300 385 सीटें 50% से ऊपर जाना है, ये उनका टारगेट है। अब 50% से ज्यादा के लिए जो ट्राई करते हैं वो सीट जीतने की कोशिश करते हैं, तो इनका टारगेट 2 साल पहले से ही 385 390 का था, उसमें से 20 घटाकर 370 बोल रहे, और अगर उस वक्त की जो एक या दो वाली 375 है उसमें से 5 हटा दो तो 370 का आंकड़ा आ गया। और बाकी एनडीए में दोस्त पार्टियां है, उन्होंने अगर 30 इधर उधर से इकट्ठा किए तो 400 पार हो गया, एनडीए के लिए 400 पार है, बीजेपी 370 है, लेकिन ये अपोजिशन वाले सीरियस ना ले, अगर सीरियसली लेते तो नहीं इनको 370 के पहले रोक रहे हैं उस पर लग जाते, तो वो मजाक उड़ा है इसका, इसीलिए मोदी ने स्टेटमेंट क्या किया, 370 हटाया, 370 सीटें आई। ये स्टेटमेंट मजाक उड़ाने के लिए, लेकिन मोदी के दिमाग में 370 सीरियस था।
लेकिन राहुल गांधी तो सबका कह रहे हैं,
समझना पड़ता है।
राहुल गांधी तो कह रहे हैं जो वो वेल्थ का सर्वे करके और सबको जो रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो वेल्थ का सर्वे करा के और सबका पैसा छीन के और सबको गरीबों में बांट देंगे।
हाँ बिल्कुल बांट देंगे, लेकिन इसके लिए वेल्थ क्रिएशन आवश्यक होता है ना। आप सबको अगर फ्री में बांटोगे तो मजदूरी कौन करेगा, कारखाने में काम कौन करेगा, खेत में काम कौन करेगा? अगर वो वेल्थ ही क्रिएट नहीं करेंगे तो आप कहाँ की वेल्थ छीनने वाली हो, अमेरिका की, चाइना की या सऊदी अरेबिया की? वेल्थ
लोग तो सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं,
दे रहे हो।
हाँ बिल्कुल, आप ये देखिए कि कोई यहाँ राजस्थान में कोई 4-5 हजार छोड़ के चले गए कुछ दिनों में कांग्रेस को।
अरे आपकी वकालत करने वाले ही भाग गए ना, एक एक करके प्रवक्ता ही भाग रहे, एक एक करके प्रवक्ता भाग रहे ना। और दूसरी बात ये कि लोग नाराज भी है, लोग नाराज भी है, समझो। अब एंटी इनकम्बेंसी का मतलब नाराजी होती, नाराज भी है मान लेते, लेकिन नाराज भी होकर करेंगे क्या, किसको लाएंगे? देखो भारत की जनता जो है, मतदाता है, मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूं, वो शराबी की बीवी है, वो सारा कमाता नहीं, वो कमाता नहीं है, फिर भी उसको घर से बाहर नहीं निकालती। काम नहीं करेगा वो बेचारी, मर मर कर काम करेगी, 4 पैसा कमाएगी, उसमें से 5 रुपया शराब पीने के लिए देती है ना उसको, लेकिन घर से बाहर नहीं निकालती। उसको स्टेबिलिटी बोलते हैं, उसको सिक्योरिटी बोलते हैं। अगर ये ऐसा आदमी आया, मोदी को हटाएंगे और राहुल गांधी आया तो क्या हुआ, भारत के टुकड़े हो जाएंगे, और टुकड़े वाला तो साइड में लेकर बैठता है। तो मोदी के लिए सबसे बड़ा एसेट राहुल गांधी है, जो तो क्या बोलते हैं, 50 साल पहले की फिल्म है शोले, तो उसमें वो बोलता है ना, उसकी फिर एडवर्टाइज भी बनी थी, गब्बर सिंह बोलता है, 50-50 कोस दूर कोई बच्चा जब रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो आज की तारीख में उसका मतलब क्या है, बेटे चुपचाप कमल छाप वरना राहुल आ जाएगा। ये आप समझ लो, मुझे मैंने एक उस पर क्या बोलते हैं जोक किया था, मैंने छोटा वीडियो भी बनाया था उस पर, कि वो अभिनंदन वर्धमान जो है वो तो वहां पकड़ा गया था पाकिस्तान में, तो उसको 24 घंटे में छोड़ दिया। तो आगे बाद में उसका पार्लियामेंट में पाकिस्तान के स्टेटमेंट में हुआ, तो मैंने उस वक्त लिखा था कि मोदी ने इमरान को फोन कर दिया, देख भैया 24 घंटे में उसको छोड़ दे, वरना मैं कोई मिसाइल नहीं छोड़ूंगा, मिसाइल को बांधकर राहुल गांधी को छोड़ दूंगा। तो इमरान बोला यार उसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे, बजवा को बोला उसको छोड़ दे, वरना राहुल गांधी यहाँ टपकेगा, वो अनगाइडेड मिसाइल है, कहाँ पड़ेगा पर मालूम नहीं, ना उसको मालूम है ना हमें मालूम है, उसके बजाय वर्धमान को छोड़ दे, पाकिस्तान को बचा ले। तो राहुल गांधी है ऐसी बात है, राहुल गांधी को डर कर ही मेरा ख्याल है 5-10% वोट मोदी के बढ़ते हैं। उनको मोदी चाहिए भी नहीं शायद, लेकिन राहुल ना आए इसके लिए दे देते। देखो एक बात दहशत की होती है, वसूली क्या होती है, 1% क्या होता है, नहीं तो तेरा काम बिगाड़ दूंगा, यही तो होता है ना एक्सटॉर्शन, भाई राहुल को भेज दूंगा, राहुल गांधी आएगा। तो ये जो लोगों के दिमाग में डर है और राहुल गांधी जितना भाषण करता है उतना वो बता जाता है। मुझे लगता है एक हफ्ते पहले कहीं टीवी चैनल पर मैं देख रहा था, वो आनंद रंगनाथन ने वही बोला कि जितना राहुल को ज्यादा दिखाएंगे उतना मोदी का फायदा है, टीवी पर ज्यादा से ज्यादा राहुल के भाषण दिखाओ, या आनंद रंगनाथन ने बोला था। वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसलिए मैंने तो इस पर किताब लिखी है, उसका हिंदी संस्करण भी अगले हफ्ते आ जाएगा, मैं आपको कॉपी भेजूंगा, उस पर भी
आप मुझे कॉपी भेजेंगे तो फिर उसके बारे में बात करेंगे आपसे। बिल्कुल
कुरियर करके आपको भेज दूंगा।
कुछ दर्शकों के प्रश्न आए हैं वो ले लेते हैं।